ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय आज के इस संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। श्री वृंदावन धाम में रमण ऋतिक क्षेत्र में हम सब लोग बैठे हुए हरे कृष्णा। तारीख 17 अगस्त 2011। तो सब जगह पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वातावरण निर्माण हो रहा है। बलराम जी का जन्म हुआ है, श्रावण शुद्ध पूर्णिमा के दिन और श्री कृष्ण जन्म की तैयारी हो रही है। तो भगवान कृष्ण गौलोक धाम को छोड़कर भौतिक दुनिया में आते हैं और गौलोक धाम उनका चिरंतन धाम है। गौलोक धाम में अनंत प्रेमी भक्त उनकी सेवा करते रहते हैं। शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त की जो जानते भी नहीं कि वो भगवान है। वैकुंठ लोक के परे जो धाम है उसमें भगवान को भगवान के रूप में पहचानते नहीं है। भगवान के धाम में द्वारका भी है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, वैकुंठ भी है। सबसे पहले वैकुंठ आता है। इन सभी जगह पर भगवान के शुद्ध भक्ति रहते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य प्रधान है, दास्य भाव प्रधान है। फिर वही दास्य भाव जो अधिक प्रकट होता है द्वारका में, वहां के द्वारका में, फिर उसके आगे अयोध्या, उसके आगे मथुरा। लेकिन जब गौलोक धाम आता है तो गौलोक धाम में जो प्रवेश कर सकते हैं या वहां पर रहने के योग्य है वो भक्त भगवान के पोजिशन को नहीं जानते हैं। योग माया उनको विस्मृति करा देती है भगवान के पोजिशन की। एक माया है जो हमें भगवान को ही पूरी तरह भुला देती है कि भगवान भगवान है, और हमें इंद्रिय भोग में लगाती है, उसको हम महामाया कहते हैं, जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं शरीर को अपना समझकर। और एक होती योग माया जो शुद्ध भक्त को भी भगवान को भुला देती है। जैसे यशोदा मैया जानती नहीं कि मेरा बेटा भगवान है, सुदामा श्रीदामा लोग जानते नहीं है कि हमारा मित्र जो है भगवान है, कोई नहीं जानता है। यहां तक कि उनको हमेशा आश्चर्य होते रहता है, अरे हमारा मित्र जो है कल मैंने उसको कुश्ती में हराया था, आज गिरिराज को उठा लिया उसने, चलो उसका हाथ दुखता होगा तो मैं उसको थोड़ा सा रिलीफ कर दूंगा, थोड़ा देर मैं पकड़ लेता हूँ, तो थोड़ा सा मक्खन खा ले तब तक। मैया भी बोल रही है कि सुबह से भूखा है, सुबह से उठा के खड़ा है, ना माखन खाया ना मिश्री खाई। और दोस्त भी कह रहा है कि तो हाथ भी दुखता होगा, कल मैंने तुमको कुश्ती हराया था ना, तो मैं पकड़ लूंगा उसको। इसका मतलब क्या होता है कि उनको पता नहीं है कि भगवान है, ना मैया को पता है, ना बाबा को पता है, ना दोस्तों को पता है। और भगवान भी ऐसे हैं कि ये चाहते भी नहीं है वो, कि ये लोग जो मेरे प्राण प्रिय सखा और माता पिता है, ये मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं। जैसे पहचानेंगे तो क्या होगा, तुरंत पूजा पाठ चालू हो जाएगा, आरती शुरू हो जाएगी, है श्लोक बोलने चालू हो जाएंगे। तो भगवान भी घरेलू वातावरण को अनुभव करना चाहते हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर, जो हम सब चाहते हैं ना। भारत सब भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसकी सबसे मजबूत नींव क्या है, परिवार संगठना, फैमिली सिस्टम। इस परिवार में माता होते हैं, पिता होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी होती है, भाई बहन, बहू भाव, क्या कहते हैं उसको, भाई के बीवी को क्या बोलते हैं, भाभी होती है ना, भतीजा होता है। ये सब लोग एक प्रेम का बंधन के कारण एकत्र आते हैं, है ना। और भगवान भी ऐसे वातावरण रहते हैं। गौलोक धाम का वातावरण जो है वो इतना सुंदर वातावरण है, इसमें न किसी न कोई जानता है भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन सब परिवार के लोग हैं। आठ भाई हैं नंद महाराज के, चार भाई हैं वृषभानु महाराज के, आठ भाई हैं, सबके बीवियां हैं, सबके बच्चे हैं, सबके बच्चों की बीवियां हैं, सबके बच्चों के बच्चे हैं, गोपियां हैं, गाय हैं, मयूर है, तोता है, शुक है, हर प्रकार के जीव है वहां पर, और कोई जानता नहीं कि भगवान भगवान है। सब लोग केवल उनको अपना समझकर प्रेम करते हैं, हाँ, हृदय का सखा कहकर, माता भी गाय भी सब लोग प्रेम करते हैं उनके ऊपर, कोई नहीं जानता कि वो भगवान है। वो जो भगवान का दिव्य धाम है, वो धाम का हिस्सा भगवान पृथ्वी पर भेजते हैं, स्वर्ग लोक में नहीं भेजते हैं, इंद्रलोक में नहीं भेजते हैं, वायु लोक में नहीं भेजते हैं, हाँ, उनको इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए वो अपने दिव्य धाम का जो हिस्सा है बड़ी ही कृपा से अनुकंपा से पृथ्वी प्रकट करते हैं। पृथ्वी पर भी उनको भारतवर्ष बहुत प्रिय है, इसलिए पृथ्वी पर भी वो पश्चिम जगत में नहीं करते हैं, भारतवर्ष में प्रकट करते हैं। तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम सब लोग कहाँ सेवा कर रहे हैं। वो अनंत धाम जो है गौलोक धाम, उसका ही अनंत हिस्सा, क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण का जब कोई हिस्सा निकलता है वो भी पूर्ण होता है, अनंत का जो हिस्सा निकलता है वो भी अनंत होता है। और अनंत का एक हिस्सा अनंत होने के बाद निकालने के पश्चात भी अनंत में कोई कमी नहीं आती है, अनंत अनंत रहता है और जो हिस्सा है वो भी अनंत रहता है, उसमें भी कोई कमी नहीं आती है। ये बहुत विशेष गणित है ना, आपके गणित में ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो भगवान की असीम कृपा है उसके हम लोग कहीं ना कहीं हिस्सेदार है, कहीं ना कहीं भागीदार है, क्योंकि हम लोग भी रमण रीति में बैठे हुए हैं। जब मैं राधा माधव गा रहा था वो देख रहा था, यही भूमि है जहां पर कृष्ण भगवान दौड़ते हैं, यहीं दौड़ के गेंद खेलते हैं, यहीं गेंद खेलते हैं, चिना झपटी खेलते हैं, लुका छिपी खेलते हैं, हाँ, बंदर बन जाते हैं, कभी मेंढक बन जाते हैं, ये पंछी की आवाज करते हैं, ये पंछी की छाया को पकड़ने के लिए भागते हैं, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, जमीन पर छाया गिर रहे हैं, वो भाग रहे हैं उसके पीछे। सुंदर क्रीड़ा करने की भूमि है ये, वो भी उसी के गौलोक वृंदावन का हिस्सा है। और जब प्रलय होता है तो इसका नाश नहीं होता है, ये सब बिल्डिंग बिल्डिंग तो हट जाएंगे, लेकिन जो भूमि है गौलोक वृंदावन की, जो हिस्सा बन के आई है, उसका नाश नहीं होता है, वैसे ही रहता है। जो भी यहां पर लीला होती है, जो भी लीला का भाव है, जो भी प्रेम का भाव है, वो भी वैसे का वैसे रहता है, उसमें कोई क्षति नहीं आती है, क्योंकि वह सब दिव्य है। दिव्य का मतलब जो कभी भी समय के प्रभाव से नष्ट नहीं होता है। लौकिक का मतलब समय के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, जैसे हमारा शरीर, हमारा यौवन, हाँ, हमारी कला, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, ये सब लौकिक है, समय के प्रभाव के अनुसार खत्म होने वाला है। लेकिन जो हृदय का भाव है, जो भी भक्ति छोटी मोटी हम लोग करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, वो सब चिरंतन है, हमारे लिए भी और विश्व के लिए भी चिरंतन है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो भगवान के इतने प्रिय भक्त लोग वहां रहते हैं, क्यों आते हैं यहां पर, वो क्या जरूरत है उनका आने की, यहां पर परिपूर्ण धाम है, वहां पर सब भक्तों का प्रेम भी परिपूर्ण है, धाम भी परिपूर्ण है, प्रेम भी परिपूर्ण है, सब कुछ परिपूर्ण है वहां पर। लेकिन एक ऐसी वस्तु होती है जिसको कहते हैं अनुकंपा, दूसरा शब्द है उसके लिए करुणा। वो करुणा होती है ना ऐसी कि जो आदमी एकदम संतुष्ट रहता है, आराम से एकदम सब तरह से संतुष्ट है, उसके जीवन में कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं भागदौड़ करते नजर आता है। क्योंकि जब वो स्वयं के जीवन में संतुष्ट है तो वो दूसरों के जीवन में वो संतुष्टि लाना चाहते हैं। इसलिए भगवान परम संतुष्ट परम स्थिति में होने पर भी वो छोड़कर यहां पे आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कुछ बालक ऐसे हैं जो उनको छोड़कर यहां पर शरीर का और भौतिक दुनिया का भोग लेने को आए हैं। और अगर भोग लेने को आए हैं, भोग ले रहे, आनंद में है, तो कोई तकलीफ नहीं उनको, कष्ट भोग रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, बार बार मुंह पे गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खोज रहे हैं नहीं मिल पा रहा है, खोज रहे हैं नहीं मिल पा रहा है, तो खोज रहे हैं ठोकर खा रहे हैं। तो कौन से ऐसे पिता हैं जो अपने बालक को ऐसे देखते हैं, अरे मेरा बालक जा रहा है ठोकरे खाते जा रहा है, तो आराम से गैलरी में बैठे देखते रहेगा, खाने दो ठोकरे उसको, नहीं शायद वो गैलरी से कूदेगा नीचे, पता नहीं, या जीने से भाग के आएगा, तुरंत उसको हाथ देगा, बचाएगा उसको, बताएगा यहां मत जाओ, इधर जाओ। लेकिन बालक बेचारा अंधा है, अंधकार का मतलब क्या है, अज्ञान है, पता नहीं उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान को, जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, हाँ, सबने उनको वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। कितनी बार आया वो वृंदावन में आपको मिलने के लिए, आया क्या कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अब तक आया वृंदावन में? हाँ हाँ, जवाहरलाल नेहरू आए थे शायद, लेकिन वो आम जनता के कष्ट को देखकर करुणावश नहीं आते, वो अपने राजनीतिक हेतु से आते हैं, कुछ ना कुछ उनका राजनीतिक हेतु रहता है उसके पीछे। लेकिन भगवान जो आते हैं ना, वो एक एक जीव के, मनुष्य जीव के नहीं, केवल लता पता पंछी सुअर गधा सबके करुणावश वो आते हैं, और सबको आने के बाद में अपने धाम में लेके जाते हैं। इसलिए यहां के दुनिया का कोई भी नेता उनकी तुलना नहीं कर सकता है। हालांकि शास्त्र के अनुसार नेता को भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, भगवान के ही उम्मीदवारी मतलब भगवान के ही प्रतिनिधि के रूप में, उनके उपलक्ष्य में उनको कार्य करना चाहिए, तब उनको सब जनता के पुण्य कर्म का एक छठवां हिस्सा मिलता है, और जो जनता पाप करती है उसका भी एक छठवां हिस्सा मिलता है। वो बड़ा जिम्मेदारी होती है, आप अगर कुछ पाप करेंगे तो उसका छठवां हिस्सा उसको लेना पड़ेगा। आज भी ये सत्य है, लोग जानते नहीं है, लेकिन सबका हिसाब किताब ठीक से हो रहा है। इसलिए आजकल जो राजनीति के लोग राजनीति में आते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, वो सबसे भयंकर नरक में जाते हैं, क्योंकि आम तौर पे जनता पाप ही करती रहती है, वो खुद भी पाप करते रहते हैं, उनका खुद का पाप और सारी जनता का छठवां हिस्सा, कितनी भयंकर अवस्था है। हा? कुछ 5-5 साल के पावर के अंदर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, 500-600-800 हजारों करोड़ रुपया, और उसको कितना भोग करेंगे, उतना भोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अनंत काल तक नरक में जाते हैं। तो इनकी स्थिति एकदम बहुत घटिया स्थिति है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो है करुणावश आते हैं, हम लोगों को बचाने के लिए आते हैं। हम तो साल में एक बार जन्माष्टमी मनाते हैं, हा? लेकिन भगवान चाहते हैं कि हमारे जीवन में रोज जन्माष्टमी हो। कैसे हो? जिस दिन भगवान का जन्म होता है वो जन्माष्टमी है ना, जिस दिन आपके हृदय में भगवान की याद का जन्म हो गया वो भी जन्माष्टमी है। हर रोज सवेरे हम भगवान का नाम के जप करते हैं तो हर रोज सवारे जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव होता है भगवान का। ये उद्देश्य से भगवान आते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो एक दिव्य कार्य है, दिव्य स्थिति है, दिव्य घटना है, दिव्य प्रसंग है, जिसके वजह से जीव के हृदय में आनंद की लहरें उमड़ती है अपने आप ही। जब वो आए तब क्या हुआ, इतना सुंदर वातावरण था आकाश में, नक्षत्रों के बीच में, हाँ हर तरह से संपृक्त समय था वो। और जो दुखी जीव थे वो भी खुशियों का अनुभव करने लगे, जो गरीब लोग थे उनके घर में हलवा पूड़ी पकने लगे, हाँ ऐसा वर्णन है सब कुछ। जहां समृद्धि नहीं है वहां समृद्धि का अनुभव होने लगा, जहां दुख है वहां सुख का अनुभव होने लगा, आनंद का अनुभव होने लगा। भगवान का अस्तित्व जो है वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो कितने भी अपरिपूर्ण वस्तु होगी तो परिपूर्ण बना देती है उसको, जहां जहां कमी है वो पूरी हो जाती है भगवान के आने से। वो श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये जो भाग्य है भगवान के अस्तित्व की अनुभूति होने का, इस भाग्य को सब लोगों को देने के लिए वो आए, टू गिव द बेनिफिट कि भगवान क्या वस्तु है, इसका अनुभव सब जीवों को देने के लिए आए, जो उनको ठुकरा कर चले गए हैं। अरे हम कोई, अगर हम पिता है, हमारे लड़का बोला कि पिताजी आपके साथ नहीं रहना है हमको, हम चले जाएंगे यहां से, तो पिताजी भी हम कर से बोले जाओ जाओ रास्ते पे भीख मांगो। लेकिन पिताजी गौलोक वृंदावन का इतना आनंद है, फिर भी ईर्ष्या करके हम सब लोग इधर आए हैं और फिर भी हमारे पीछे भाग रहे हो, जहां जहां हम जा रहे हैं अपने पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ अगर हम गंदी नाले के कीड़ा बन गए तो उसमें भी परमात्मा बन के हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए कहा गया कि हमारे जीवन में भगवान जैसा मित्र है कोई नहीं है, कोई तुलना नहीं कर सकता है उस मित्रता की। क्या आप गटर में जाओ तो गटर में आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, परमात्मा के रूप में आपके हृदय में बैठ के आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब ये मेरे ओर मुड़ेगा, कब मेरे ओर मुड़ के पूछेगा कि क्या हो रहा है, क्या दोबारा मैं आपके पास आ सकता हूं। इसके इंतजार में जन्म जन्मांतर तक हजारों लाखों साल तक आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, प्रेम के वश, करुणा के वश। कोई जरूरत नहीं उनको, हमारे से उनको कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। और जो भी हम अहंकार करते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा का उनको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जैसे बच्चा ने समझो एक कागज पे अच्छा डायग्राम निकाला और बीच में लिखा हैप्पी बर्थडे पापा, वो दे दिया आपको, पापा को उसकी जरूरत नहीं रहती है, केवल उसका प्रेम दिखता है पापा, बस दैट्स ऑल। लेकिन वो कागज में जो लिखा हुआ है उसका क्या वैल्यू है पापा के लिए, व्हाट इज द वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं है। तो हम लोग यहां पर पूजा अर्चा कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान की दृष्टि से उसको कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अगर है क्योंकि वो उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं इसलिए उसको वैल्यू है, वो स्वीकार कर रहे हैं, वो उसके अंदर प्रेम को देख रहे हैं इसलिए वो वैल्यूएबल है, अमूल्य है। जैसे गिलहरी ने कितने दाने फेंके रामचंद्र के सेतु में, देखो आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती थी और थोड़ा सा शरीर को झटकी झटका देती थी, कुछ विरेती के दाने ऐसे राम जी के सेतु में गिरते थे, क्या वैल्यू है उसके बताओ, कभी सेतु बनता था क्या उसका, हजारों जन्म तक तभी वो करती रहती ना, हजारों बार रामचंद्र का अवतार भी होता था तभी वो उसका सेतु पूरा नहीं होता था, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, एकदम इनसिग्निफिकेंट है वो, तुच्छ चीज है। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो भक्ति भाव से कर रही है, और महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी भावना को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भी उसका बार बार हम लोग जिक्र करते हैं और गुणगान करते हैं, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कितने दयालु है, वो केवल हनुमान जी की सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो गिलहरी की सेवा को भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमको चाहते हैं, और हम जो भी करेंगे उसको तालियां बजाना चाहते हैं, वाह वाह। जैसे बालक कैसे उठ के खड़ा होता है, 10 बार गिरता है फिर खड़ा होता है, हम लोग वाह वाह ताली बजाते हैं, अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ हम लोग भाग सकते हैं और खड़ा भी नहीं हो सकता है, फिर भी वो खड़ा हो रहा है तो वो हम ताली बजा के उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, वैसे हमको भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमारी सेवा को जो तुच्छ है उसको स्वीकार करके हमको प्रोत्साहन दे रहे हो, हमारे अवगुणों को दुर्लक्ष कर रहे हैं, हमारे अवगुणों के ऊपर उंगली नहीं रख रहे हैं। कितने दयालु भगवान है हमारे, ऐसे दयालु भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब इस पृथ्वी पर अधर्म का वृद्धि होता है और धर्म का नाश होने लगता है तो धर्म को स्थापन करने के लिए वो आते हैं। साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, जो दुष्कृतिना है, जो राक्षसी लोग हैं प्रवृत्ति के, उनको मारने के लिए आते हैं। लेकिन उनका अंदर का उद्देश्य यह है कि अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हो। कुछ भक्तों को भेजते हैं, वो जाओ मेरी तरफ से, जाओ इन दुनिया के लोगों को जगाओ, मेरी अनुभूति दिलाओ, मेरी याद दिलाओ उनको, कह दो उनको मैं याद करता हूं उनको, कह दो उनको कि मैं चाहता हूं वो मेरे पास लौट के आ जाए, हर तरह का मैसेज भेजते हैं वो। लेकिन उन भक्तों को भी बहुत आतंक होता है जो अपनी सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए, उनको भी राक्षसों की तरफ से बहुत कष्ट होता है, तो उनको आनंद देने के लिए भी आते हैं साधु लोगों को। सबसे मूल उद्देश्य उनका यह है कि साधुओं को प्रसन्न करने के लिए आते हो। और क्यों आते हैं? अपने धाम की लीला को दोबारा यहां प्रकट करके हम सब लोग जो उनको भूल चुके हैं उनको दोबारा याद दिलाकर उनकी ओर आकर्षित करने के लिए आते हो। तो हमको ये उत्सव एक साल में एक बार आता है, फिर रामनवमी भी आती है, फिर गौर पूर्णिमा भी आती है, अलग अलग प्रकार से भगवान आते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव में, अलग अलग देश में, अलग भाव से लीला करते रहते हैं, ताकि हम लोग ये न के न प्रकार न किसी भी प्रकार से उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, और यहाँ का जो हमारा घिलौना जीवन है उसको छोड़ के हम उनके पास चले जाएं। जब तक यहाँ है उनके भाव में रहे, और छोड़ के यहाँ पर बाद में जीवन के अंत में उनके पास चले जाएं, इसलिए वो आते हैं। और अगर हम इतना सब उन्होंने करने के बाद भी उनकी ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं तो हमारे दुर्भाग्य को क्या वर्णन कर सकते हैं, क्या कहें, व्हाट टू से। इसलिए हमको भगवान के इन उत्सवों का पूरा लाभ लेना चाहिए, खोई हुई स्मृति को जागृत करने के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों में हमारा अनंत भाग्य छुपा हुआ है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि जन्माष्टमी का मौसम आने लगता है तो हमको हृदय में उत्साह भरना चाहिए कि अभी भगवान का विवाह होने वाला है, फिर हमारे भगवान का जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन वो हर एक पल हमारे जीवन में अवतार लेना चाहते हैं, हर एक पल में हमारे जीवन में अवतरित होना चाहते हैं, क्योंकि उसी में जीव का कल्याण है। उनका यहाँ आना, उनका यहाँ लीला करना, ये हमारे कल्याण के लिए केवल उन्होंने योजना किया है। अगर हम समझ भी जाएंगे केवल कि उनका जन्म और उनका कार्य जो है वो दिव्य है, लौकिक नहीं, हमारे जैसा नहीं है, इतना समझ भी जाएंगे तो भी हमारा कल्याण है। और वो हम समझ गए कि नहीं गए उसका एक परिमाण है, जो हमारे जीवन में आज हो रहा है वो भी उनकी लीला है। ये अगर हम समझेंगे और उसको धन्यवाद के रूप में स्वीकारेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हम समझ गए कि वो दिव्य है उनकी लीला। ऐसा नहीं कि वो द्वापर के अंत में 125 साल के अंदर आए और अवतार लिया और लीला किया और चले गए और उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ये एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, हाँ मर्यादित अनुभूति है। लेकिन उनकी लीला जो है वो नित्य लीला है, और हमारे सबके जीवन में वो लीला कर रहे हैं, केवल हम लोग अज्ञान के अंधकार में उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे जीवन में एक बार आपने भगवान को मान लिया कि भगवान है हमारे, तब से वो हर क्षण हर चीज हमारे जीवन में अपने निर्देश में करते हैं, अपने सुपरविजन में करते हैं, और वो हर एक चीज जो है वो उनकी लीला है, उनकी कृपा है। ये अगर हमको समझ में आया तो हमारा हर जीवन का हर क्षण धन्य है, और हम उनका नाम और उनका गुणगान करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे। इसलिए इस अवतार इस उत्सव को आप बहुत प्रेम से लीजिए जीवन में। ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं और कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। हम समझते हैं खाली बुरा कर रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वो हम अपने कर्मों की वजह से कष्ट भोगते रहते हैं। ठाकुर जी हम पर उतना होते हुए भी, हम लोग कर्म करते हैं उसका फल इतना होना चाहिए, लेकिन आप उनको याद कर रहे हैं तो उसका टोकन हमको देते हैं खाली, बाकी सब कर्म को जला देते हैं। कितना डिस्काउंट देते हैं हमको, इतना सब करने के बाद भी सब जगह डिस्काउंट है उनका। उनका नाम लो, उनको थैंक यू बोलो, तुरंत सब कर्म के फल नष्ट हो जाएंगे। उनका स्मृति जो है जीवन का सबसे बड़ी दवा है, सब कष्ट को मिटाने वाली। प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी कृष्ण किताब में कि जो ताप हम भोग रहे हैं शरीर के, मन के, आत्मा के और पड़ोसियों के और अन्य जीवों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, जितने भी ताप भोग रहे हैं और जितने तापों से जितना हमको कष्ट हो रहा है, वो सब कष्ट जो है केवल भगवान की कथा सुनकर नष्ट हो सकता है। मतलब कष्ट वही का वही है लेकिन उसकी अनुभूति होगी नहीं आपको। इतना आनंद हमको भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है, भगवान के बारे में सोचकर प्राप्त होता है। तो इतनी शक्ति होने पर भी जीव उस भाग्य को स्वीकारता नहीं है, इसलिए वो बार बार त्रिविध तापों से पीड़ित रहता है। अब इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, दुर्भाग्य इसी को कहते हैं कि सब भाग्य के साधन जुड़े हुए हैं, भगवान ने जोड़ दिए हैं, भगवान स्वयं तत्पर है, इंतजार कर रहे हैं कब जीव मेरे ऊपर मुड़ेगा, कब देखेगा मुझे। सब कुछ अनुकूल होते हुए भी हम लोग उनको नहीं लेते हैं, ऐसे ले ले लो फिर भी हम लेते नहीं हैं, तो और क्या कह सकते हैं उसको। इतना भाग्य भगवान ने लुटा कर रखा है और श्री वृंदावन धाम इस भाग्य का एक संपृक्त स्वरूप है। मतलब खचाखच भरा, बोलते ना उसको, खचाखच भरा हुआ ऐसा है ये यहां की स्थिति। बाकी स्थिति भी ऐसी ही है लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इतना संपृक्त नहीं है। यहां की स्थिति बहुत उल्टी है। जितना आनंद दुनिया में हम हरे कृष्ण भगवान का नाम लेकर ले सकते हैं उससे हजारों लाखों गुना यहां पर होता है भाव लाभ। पद्म पुराण में लिखा है एक लक्ष्य बार होता है उसका परिणाम। मतलब क्या चाहिए आपको और एक कदम उठाएंगे तो एक लक्ष्य कदम उठाने का लाभ मिलेगा, एक नाम लेंगे तो एक लक्ष्य बार नाम लेने का लाभ मिलेगा, एक माला करेंगे तो एक लक्ष्य माला करने का लाभ मिलेगा, 16 माला करेंगे तो कितना 16 लक्ष्य माला करने का लाभ मिलेगा। लेकिन एक माला करते हमको नींद आती है, हाँ सोचते कब खत्म होगी माला ये 16 माला में सोचा, अरे तो 16 माला करनी है, बाप रे जीवन के अंत तक पता नहीं हो खत्म होगी कि नहीं होगी ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हमको रुचि नहीं है, ना ज्ञान है, ना अनुभूति है, ना कुछ नहीं है। तो अगर परम परम भाग्य भी हमको लुटाया जाए तो क्या लाभ है उसका। हाँ पालती घड़ी पर अगर हजारों लीटर पानी में डाल दिया तो क्या लाभ, क्या है, सब सब बहते बह के जाएगा। एक बार उस पात्र को उल्टा करना पड़ेगा तब उसके अंदर गिरेगा, तब कुछ लाभ होगा उसका। बस हमको करना इतना ही है, हमारे आसपास सब भाग्य ही भाग्य है, खाली पात्र को सही दिशा में रखना है, बस उतना ही करना है। दैट्स ऑल। कृपा सब जगह से फैली हुई है, खाली उसमें भरने के लिए व्याकुल है, कृपा भी वेट कर रही है भगवान की, लेना चाहिए। इसलिए हम जन्माष्टमी में उपवास करते हैं। क्यों करते हैं? थोड़ा इंद्रियों को बोलते हैं बस अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, बहुत दिन तक भोजन कर लिया, आराम कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक दिन भरा था व्यवधान करो उसको, और सारे इंद्रियों को जितना भोग देना है वो बंद करके उस दिन सारे इंद्रियों को भगवान में लगाना है, जप करना है, उनके नाम का स्मृति है, परिक्रमा देनी है, कथा सुननी है, अभिषेक देखना, अभिषेक करना है, सहायता करनी है इसमें, ताकि हमारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से जीवन का कल्याण हो सकता है, उनकी ओर हम उनके चरणों में स्थित हो सकते हैं, उनकी स्मृति में, उनकी चेतना में, जीवन के परम स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं। यही वृंदावन धाम का परम हमारे लिए भेंट है, वरना वृंदावन धाम तो कैसा है, सुअर है, गधे हैं, गंदगी है, सब कुछ है इधर, लेकिन उसके परे वृंदावन धाम है। यहाँ पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ईर्ष्या है, डाकू है, सब कुछ यहाँ पर है, बहुत भयंकर घटनाएं हैं, लेकिन वृंदावन जो असली है वो उसके परे है, जो दिव्य है, ये केवल भूल भुलैया है। जिनको श्रद्धा नहीं उनको भगाने के लिए यहां से, जिनको श्रद्धा है वो उसको सहन करके भी उसके आगे श्री वृंदावन धाम का लाभ और दर्शन करना चाहते हैं भाव की स्थिति में, भाव के रूप में। इसलिए भजन करना चाहिए। भजन करने से प्रकृति का जो आतंक है वो सहन करने में हम सक्षम बन जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं बार बार हम लोग, और कुछ गाड़ी चोरी हो जाती है, कुछ होता है, ये होता है, कुछ वो होता है, बहुत भयंकर चीजें होती रहती है, यहाँ पर भयंकर प्रकार से मृत्यु आती रहती है। तो कभी कभी श्रद्धा उड़ जाती है, क्योंकि अज्ञान की वजह से श्रद्धा उड़ जाती है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि जो श्रद्धालु व्यक्ति है, भगवान पर श्रद्धा रखता है, उसको भगवान कभी भी कुछ बुरा नहीं करते हैं, जो भी करते हैं उसके अच्छे के लिए करते हैं। जैसे मूर्ति वाला जो है, ये मूर्ति बनाते हैं ना जयपुर में, सफेद पत्थर, काला पत्थर लेके आते हैं, उसको करोड़ों बार ठोकते हैं, किले से मारते रहते हैं, पत्थर बोला क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, यहां से मार रहे हो, वहां से मार रहे हो, आगे से मार रहे हो, पिछड़ से मार रहे हो, घिस रहे हो, क्या कर रहे हो क्या? लेकिन सारा चीज सहन करने के पश्चात एक दिन वो स्थिति आती है कि उसको कोई पिन भी लगाता नहीं है, पिन केवल आरती पूजा मसाज तेल का अभिषेक पंचामृत का अभिषेक, हाँ सुंदर सुंदर मालाएं फूल वही चलता दिन भर। उसके बाद में वो पत्थर को पता है कि क्यों क्यों उसको ठोका जा रहा है, तो पत्थर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, उस घड़ी का इंतजार करेगा जब सब ठोका ठोकी खत्म हो जाएगी और केवल आरती और पूजा बचेगी, है ना। हम भी ऐसे ही हैं, पत्थर की तरह है, कोई आकार नहीं है उसके अंदर भी, तो गुरु महाराज और भगवान मिलकर हमको ठोक रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है हमको, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर पता है कि क्यों ठोका जा रहा है तो हम लोग बोले थैंक यू वेरी मच, जल्दी जल्दी करो, जल्दी मूर्ति बनेगी तो अच्छा होगा, फिर अनंत काल तक कोई ठोकेगा नहीं, यहां तक कि सिद्धा करते वक्त तो ऐसा उंगली रखेगा बीच में और फिर वो सुई को थोड़ा सा ऐसे घुमाएगा ताकि वो खाली कपड़े के अंदर फेटे के अंदर घुसे, शरीर को ना लगे। जिस पत्थर को बड़े बड़े किले से हथौड़े से ठोका गया था उसको एक सेफ्टी पिन का नोक जो है ना वो भी लगता नहीं है, उसके बाद में इतनी देखभाल, इतनी क्या कहते हैं, केयर ली जाती है। लेकिन पत्थर को मूर्ति होने तक इंतजार करना पड़ता है उसके लिए। उसी तरह से हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आते रहेंगे, तो ये जानकर कि भगवान हमारे लिए कर रहे हैं धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू माय लॉर्ड कि आपने हमें, हम जैसे पत्थर को मूर्ति बनने के प्रक्रिया के लिए योग्य समझा, थैंक यू। जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होगी एक क्षण भी आपको यहां नहीं रखेंगे, वो तुरंत अपने धाम में लेके जाएंगे। जो साफ सुथरा हो चुका है, सब कर्मों से मुक्त होके भक्ति से पूर्ण हो चुका है, उसको एक क्षण भी रुकाते नहीं वहां पर, अपने पास लेके जाते हैं। तो उस दिन का हमको इंतजार करना चाहिए और उस दिन के लिए जो कीमत चुकानी है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना है, यस सर। चार नियम का पालन करना है, यस सर। आपकी सेवा करनी है, यस सर। कष्ट सहने, यस सर। क्योंकि सारी जो योजना है वो हमको उनके पास लेके जाने की योजना है, उसमें थोड़ा मोटा कष्ट होता ही रहता है, दुख नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने ढीला बना दिया और लंबा कर दिया तो नुकसान किसका है, हमारे नुकसान है। इसलिए हम सब लोगों को भगवान की इस दिव्य उत्सव का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी शुद्धि होगी। और यहां जो उत्सव हम मनाते हैं हृदय से, उसी उत्सव का गौलोक वृंदावन में हमारे लिए बुकिंग होता है। लास्ट टाइम बताया था मैंने इस बात को, यहां पर जो भी उत्सव हम करते हैं वही उत्सव हमारे लिए वहां पर होंगे जब हम जाएंगे। इसलिए एक एक उत्सव यहां का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम थके हुए हो बीमार हो फिर भी हमको उत्सव में भाग लेना चाहिए, मन से की भावना से क्यों ना हो लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर किए गए हर एक कार्य को वहां पर रजिस्टर किया जा रहा है और आपके लिए एक सुंदर दिव्य जीवन का आयोजन किया जा रहा है। हमारा जो अगला जीवन गौलोक धाम में होने वाला है उसकी जो रचना है, उसकी जो डिजाइन है, वो सब बनाई जा रही है। उसको कितना गंभीरता से लेना है आपके हाथ में, और कितनी उसके लिए मधुर मधुर लीला करते हैं भगवान, हाँ दिल को आनंद देने वाली, कितना आनंद देते हैं भगवान, सोचो आप। कोई जरूरत नहीं उनको, फिर भी वो बार बार आकर मधुर से मधुर लीला करते हैं, माखन चुराते हैं, गेंद खेलते हैं, हाँ भगवान गौलोक धाम के मालिक है वो, हाँ यहाँ पर मेंढक बनते हैं और मेंढक बनते बनते कुत्ते 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 जमुना जी में घुस जाते हैं, फिर जमुना जी के बाहर आते हैं, इतना आनंद देते हैं, सब कुछ भूलकर एक शुद्ध प्रेम जो है उससे भरे हुए लीलाओं को करते हैं यहां पर। कभी खिला था 5,000 साल पहले किया था ना, तो आज भी जब भी आप सुनते हो आनंद आता है उसको देखकर, सभी कष्ट मिट जाते हैं, सभी क्लेश खत्म हो जाते हैं, सब पीड़ा समाप्त हो जाती है, केवल आनंद बचता है। और वो आनंद ऐसी शक्ति है, उस आनंद के होने से सारे आने वाले कष्ट जो है वो भी एकदम तुच्छ नजर आते हैं, उसका परिणाम ही नहीं होता है। वो आनंद यहां पर उपलब्ध है श्री वृंदावन धाम में, सबसे भगवान का प्रिय वन है ये, 108 वन में से, हजारों लाखों वनों में से 108 वनों में से सबसे प्रिय वन है उनका। और इसी को, इसी में रहने के लिए राधा रानी और तैयार हो गई थी, इसी में गोवर्धन है, इसी में जमुना जी है, नंदगांव बरसाना भी इसमें आता है। आज के तारीख में वृंदावन यही है, लेकिन असली वृंदावन जो है वो नंदगांव बरसाना गोवर्धन सबको लिया हुआ है, पूरा कंप्लीट। और इसमें भगवान ने अपना घर का अंदर का दिव्य लीला किया है। इसमें एक क्षण का एक सांस लेने में भी बहुत भाग्य है, ऐसी जगह है। मतलब बार बार भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, उनके नाम का गुणगान करना चाहिए, जितना हो सके उनको पुकारना चाहिए, नाम के जप में और सेवा में रहना चाहिए, और धन्यवाद देना चाहिए हमेशा संतुष्ट होकर कि आपने हमको इतना भाग्य दिया है। क्यों हम रोए, क्यों हम तड़पे, ये चाहिए वो चाहिए, ये कमी है वो कमी है, जो है उसमें हम शांत रहेंगे, आनंद से रहेंगे, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अनंत रूप से अनंत मात्रा में हमारे ऊपर बरसेगी। और ये जन्माष्टमी, ये रामनवमी, गौर पूर्णिमा, होली और झूलन, ये सब का अर्थ हम समझेंगे कि क्यों इसका आयोजन है। और अमेरिका में है क्या झूलन यात्रा, चाइना में है क्या होली है चाइना में भारतवर्ष में है केवल ये सब कुछ। भगवान के अनंत लीलाओं का उत्सव यहां मनाया जाता है, क्योंकि भगवान की भूमि है ये, पावन भूमि है, इसमें हम लोग जन्मे हुए हैं, हमारा परम भाग्य है, अनंत जन्मों के भाग्य के बाद में भारतवर्ष में जन्म मिलता है, और उसके बाद में भी अनंत वर्षों के बाद में, अनंत जन्मों के बाद में श्री वृंदावन धाम इसमें जन्म मिलता है, इसमें निवास प्राप्त होता है। हमने बहुत बहुत सारा मेहनत किया है यहां तक आने के लिए, ये समझ लेना आप सब लोगों ने, आप लोगों ने जो यहां बैठे हुए हैं, यहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रकार से, कुछ जन्म के रूप में, किसी यात्रा के रूप में, किसी सेवा के रूप में, किसी प्रोजेक्ट के रूप में, यहां तक पहुंचने के लिए हमने बहुत जन्मों के लिए मेहनत किया है। तो फिर उसके बाद में यहां पहुंचने के बाद अगर हम सोते रहेंगे आराम से तो क्या लाभ है उसका, जिसके लिए दिया था, जिसके लिए मेहनत की थी, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसको कहते हैं ना कि एन कैश करना चाहिए, मतलब बैंक में अगर हमारा 1 करोड़ रुपया है तो बैंक में रहकर क्या फायदा है उसको, उसका चेक बनाओ सेल्फ का और निकालो पैसा और ले लो उसका लाभ। बैंक में रख के क्या लाभ है, हाँ वृंदावन में आ गए क्या लाभ है उसका, अगर यहां आने के बाद अगर उनको नहीं पुकार रहे हैं, उनकी लीला में नहीं रममाण हो रहे, उनकी लीला में ना मग्न हो रहे हैं, तो क्या फायदा है यहां पर आके। फिर वैसे अमेरिका जाना अच्छा है जहां भोग की भूमि है। तो इसलिए यहां पर रहते हुए अपने भाग्य को पहचानते हुए अनंत काल तक हमको हर समय हर पल उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनके भजन में रहना चाहिए। सोते जागते उठते उनका नाम मुख में आना चाहिए। कैसे ब्रजवासी रहा करते थे, हाँ यशोदा मैया गोपियां सब दिन रात जो भी कर रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, गाय का दूध बना रहे हैं, गाय को धो रहे हैं, गोबर निकाल रहे हैं, केवल भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनका नाम का कीर्तन और गायन कर रहे हैं, और कुछ नहीं था उनके जीवन में, हाँ मंथन भी कर रहे हैं तो उनके गुणगान कर रहे हैं, उनका नाम पुकार रहे हैं। हमको भी ऐसे ही जीना चाहिए, सोते जागते उठते उनका स्मरण करना चाहिए, वही ब्रज का जीवन है, इसी को ब्रजवासी का जीवन कहते हैं। और ऐसे आप रहेंगे आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई क्लेश कोई पीड़ा आपको नहीं छुएगी, बड़े से बड़ा कैंसर भी आपको हो जाएगा तो आप मस्त रहेंगे एकदम। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कथा समाप्त करने के पहले, आप गिरिराज जी की कथा का विचार करो, हाँ कि गिरिराज जी को भगवान ने उठाया, उसके पहले कितनी भयंकर वर्षा हुई थी, इतनी भयंकर वर्षा हुई थी कि सब लोगों के जीवन में हाहाकार मच गया था, अरे गाय बह रही है, बछड़े बह रहे हैं, घर बह रहे हैं, सब धान्य बह रहे हैं, हाँ कुछ मर रहे हैं लोग, पता नहीं परिवार का यहां वहां सब हो गया। उतना ही आतंक गोवर्धन के ऊपर भी हो रहा था, गोवर्धन भी उतनी वर्षा हो रही थी, वहां पर भी पेड़ परेशान थे, वहां पर के जो शेर हाथी जानवर थे वो सब भी वैसे ही भयंकर परेशान थे। भगवान ने फिर गिरिराज को उठाया और भगवान का एक उंगली का जो अग्रभाग है उसका खाली स्पर्श हो रहा है उसको, और उस स्पर्श के होने से इतने भयंकर आतंक होने पर भी गिरिराज के ऊपर रोमांच खड़े हो रहे हैं। और जब गिरिराज को रोमांच हो रहे हैं आनंद के, तभी भी आतंक हो रहा है उनके ऊपर, धड़ाधड़ वर्षा हो रही है, ऐसा नहीं कि वो वर्षा भी रुक गई, ऐसा नहीं हुई, 7 दिन तक चलती रही वो वर्षा, और गोवर्धन उसको सहन करते रहे, लेकिन वो सहन करना नाम की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी थी, वो केवल आनंद का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि भगवान का उनका स्पर्श हो रहा था, भगवान की उंगली के अग्रभाग का स्पर्श होने की वजह से उनके शरीर में रोमांच आ रहे थे। जब ऐसा दिव्य आनंद होता है तो जीवन में अनेक प्रकार के आतंक होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता, केवल आनंद का अनुभव होता है। वैसा आनंद यहां उपलब्ध है। केवल गिरिराज जी की कथा में नहीं है वो, भगवान का हमारा संपर्क रहेगा, प्रेम का संबंध और संपर्क रहेगा, तो ये सारे कष्ट होते हुए भी, इतनी भयंकर वर्षा होते हुए भी गिरिराज का रोमांच बना रहा। वैसे हमारे जीवन में भी रोमांच बना रहेगा भगवान की याद का, केवल उनका संपर्क जो है वो लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस, वो हमारे हाथ में है। गिरिराज को भगवान ने उठाया था, अपने आप पे स्पर्श हो रहा था उनका, भगवान के स्पर्श का, भगवान के नाम के श्रवण का, भगवान के दर्शन का, किसी भी इंद्रिय से भगवान के साथ संपर्क होने से वही अनुभव हो सकता है जो गिरिराज को हो रहा था। हमको करना चाहिए संपर्क वो, रोज के रूप में, सतत के रूप में, हर समय हर पल। हर समय मंदिर जाना मुमकिन नहीं, तो मन में भगवान की याद और नाम स्मरण तो कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, तब आपको वो अनुभव आएगा जो गिरिराज जी को आया था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।